आप सभी को जो भी क्लासेस अब तक हुए सब ठीक है, ओके है, समझ में आ रहा है, लाइन ठीक चल रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्फिडेंस की, और अंदर में कोई परिवर्तन भी अनुभव कर रहे हैं? पर कुछ परिवर्तन स्टार्ट हुआ है? आपका क्या अनुभव है? वो बहन जी लास्ट में जो बैठे हैं, यस बाजू में लास्ट में, आपको कैसे लग रहा है ये क्लास अटेंड करते? अच्छा, अंदर के द्वार खुल रहे हैं, फिर उसमें क्या परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात। ये जो किताब 5 है ना, उसमें जो मेडिटेशन की विभिन्न एक्सरसाइजेस है, यदि उसको आप सिंसियरली हर रोज भरेंगे तो आप अपने अंदर एक नई प्रकार की चेतना, नए प्रकार से मेडिटेशन, नए प्रकार से सेल्फ एक्सपीरियंसेस अनुभव करेंगे। ये इस प्रकार का कोर्स है जिसमें हमें हेल्प होती है इस किताब के माध्यम से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। एक मिनट बाबा की याद में।
यही मन में बाबा है हर दम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए।
अपने इस किताब में ये 5वां चैप्टर कालातीत सत्य, ट्रूथलेस टाइमलेस ट्रूथ का, तो समय का चक्र यहाँ बताया है आपके आगे। और ये समय का चक्र घूमते हुए समय की घड़ियां कहाँ आकर पहुंची है, और इस विश्व ड्रामा में, विश्व मंच पर ये समय क्या इशारे कर रहा है, और इसके पीछे सत्य क्या है कि काल, काल का मतलब है समय, और काल के इस साइकिल में सवेरे से शाम, रात और दिन, महीना, वर्ष, सेंचुरीज, ये सब हद के टाइमिंग्स का सूचक है कि 21वीं सेंचुरी चल रही है, अभी 2012 चल रहा है, अभी संध्या का समय है, फिर रात आएगी, फिर सवेरा होगा, 24 घंटों की घड़ी की टिक टिक, ये सब हद के टाइमिंग की बात है। हमारा यह यूनिट हमें ये सिखा रहा है कि इस काल के अतीत, इस काल के पीछे, इस काल के बियॉन्ड, इससे ऊपर वह कौन सा दूसरा सत्य है जो सनातन सत्य है, और उस इस काल के बियॉन्ड कौन सी बातें वहां चल रही है, कौन सा वह विश्व है वहां पर, और भी कुछ दुनिया है कोई? यह जो साकार दुनिया, यह जो फिजिकल दुनिया, यह जो 5 तत्वों की दुनिया है, इस 5 तत्वों की दुनिया के समय चक्र में कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सभी के बियॉन्ड कोई और भी सत्य है क्या, और वो समय कौन सा है, और वो समय क्या इशारे दे रहा है? तो उन सत्यों की ओर की, जहां निर्वाण है, जहां शांति है, जहां साइलेंस है, जहां कोई भौतिकता नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है, काल के अतीत, कालातीत वह सत्य क्या है, उस सत्य तक पहुंचाने के लिए ये यूनिट आपको कुछ सिखा रहा है। कोर्स 3, यूनिट नंबर 5। आपके आगे 3 प्रश्न आएंगे अभी। शाश्वत सत्य से संबंधित प्रश्नावली 1। सूरज पूरब में उगता है, इसमें असत्य क्या है? बताओ। ओके, तो आप तो रोज कहते हो सवेरा हुआ, सूरज उगा है, और अभी सनसेट हो रहा है, अभी सनराइज हो रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी से दैट सन इज राइजिंग। यस, फिर भी कहने में क्यों ऐसा आता है कि सूरज पूरब में उगता है? व्यवहारिकता कहती हूँ। तो सत्य यह है कि सूरज उगता भी नहीं है और डूबता भी नहीं, सूरज अपनी जगह पर है, और पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूरज के सामने जो पार्ट है पृथ्वी का वहां सवेरा है, जो पार्ट उसके हाँ आगे है वहां पर अंधेरा होता है। सही बात है, पर वो हम कहते नहीं है। तो कालातीत सत्य में यह भी एक सत्य है कि सूरज तो सदैव रोशनी देता, पृथ्वी का पार्ट बदलता रहता उसके सन्मुख, और इसलिए सवेरा शाम होता। तो सवेरा सूरज उगता नहीं है पूरब में। मंदिर का पताका हिल रहा है, इसमें सत्य क्या है? पर कहते क्या हो, पताका हिल रहा है, ध्वज हिल रहा है, हवा चल रही है, ये नहीं कहते हो। कहते क्या हो, ध्वज हिल रहा है, पताका हिल रहा है, राइट? तो सत्य ये है, और सत्य के बजाय हम बोलने में क्या बोल रहे हैं, राइट? आश्रम एक्सप्रेस आबू रेलवे स्टेशन पर रात्रि 9 बजे आती है। मैं रात्रि 9:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट गई। इसमें असत्य क्या है? हैं? गाड़ी छूट गई, ये सत्य है कि मैं देरी से पहुंचा, ये सत्य है। तो दोष किसा भाई, कहते हैं गाड़ी का कि गाड़ी छूट गई, गाड़ी चली गई। तो हमारे बोल जो निकल रहे हैं वो वास्तव में असत्यता के बोल है, राइट? तो काल के भीतर में जो काल चल रहा है कि 9 बजे ट्रेन आई, 9:30 बजे मैं पहुंचा, तो ट्रेन छूटी भाई 9 बजे एग्जैक्ट, तो वो टाइम की बात है ना भाई, उस समय वो जा रही है। अच्छा, उस समय प्रकृति के 5 तत्वों की हवा चल रही है, हवा चल रही है इसलिए ध्वज, और पृथ्वी उस समय सूरज के सन्मुख है इसलिए वहां सूरज का प्रकाश दिख रहा है। तो सत्य ये है, पर बोलते हम कुछ दूसरा है। तो काल के पीछे, उस समय की उस घड़ी के पीछे सत्य तो कुछ और है, और कहा कुछ और जा रहा है, समझा कुछ और जा रहा है, देखा कुछ और जा रहा है, इंटरप्रिटेशन कुछ और किया जा रहा है। इट्स क्लियर ना? ओके, ये इलस्ट्रेशन दे करके आपकी किताब में जो बातें अभी बताई गई है वो आपको समझा रही है कि जो अभी आप देख रहे हो, समझ रहे हो इन आंखों से, इस विश्व को, समय को, सृष्टि को, उस काल के पीछे कुछ सत्य तो कुछ और है, और वो क्या है आगे चलकर देखते हैं। प्रस्तुत इकाई के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, राजयोग के विषय वस्तु को समझना, राजयोग के विभिन्न उपलब्धियों की व्याख्या करना, संगम युग का मूल्यांकन करना, समय के पहचान की विभिन्न विधियां, समय चक्र का वर्णन करना। यदि मनुष्य में अतीत अथवा आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, अर्थात साक्षीपन की स्थिति डगमग हो जाती, तो इससे वर्तमान काल के सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। मेरे सामने एक परिस्थिति आ गई तो मन उस परिस्थिति की उलझनों में उलझा रहा, प्लस माइनस के विचार आते रहे, तो साक्षी स्थिति, तो जो साक्षी होकर के देखता है उसे वो सीन के पीछे का सच्चा रहस्य क्या है वो समझ में आता है, अन्यथा वो सत्य समझ में नहीं। मन अतीत की घटनाओं या भविष्य जीवन की अनिश्चितता एवं असुरक्षा से प्रभावित होकर व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लग जाता है। अतीत या भविष्य के चिंतन को वर्तमान में आवश्यकता न होने के कारण यह व्यर्थ या नकारात्मक चिंतन है। चिंता, चिंतन में क्या चल रहा है भाई, चिंता चल रही है तो वो क्या है, नकारात्मक चिंतन है, जो कि वर्तमान के संदर्भ में आवश्यक ज्ञान का चिंतन करना सत्य है। जो सीन हमारे सामने चल रहा है उस समय, उस सीन को, सीन का सत्य रहस्य ज्ञान इस ड्रामा में क्या है, ये ड्रामा का जो सीन चल रहा है इसमें कौन सा सत्य ज्ञान है, इसका चिंतन करे व्यक्ति, ना कि डगमगाए, ना कि उलझे, ना कि तनाव ले, यह है सत्य। काल के उस दृश्य को देखते हुए उस समय कौन सी बात ज्ञान की है, उस पवित्र बात को समझना ही सत्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए दादी जी के सामने ही, तो दादी जी की फर्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सारे यज्ञ के सभी भाई बहनों को खबर देना, तो दादी जी ड्रामा पर अटल हो गए उस समय। यह था सत्य ज्ञान। दादी जी को सबको खबर देना और अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल रखना, ये है सत्य ज्ञान। ये है सत्य ज्ञान। दादी चंद्रमणि जी जब गए अव्यक्त हुए, आप सभी में से किसी ने नाम सुना है उनका? हाँ, तो दादी जी इतने अच्छे लडोल रहे, क्योंकि दादी चंद्रमणि ने बैंगलोर में शरीर छोड़ा था, वहां से उनके पार्थिव शरीर को मधुबन पांडव भवन में लाया गया था। तो दादी जी क्या उस समय अपने आप को, किस ज्ञान को स्वीकार करके चले, कि कल चंद्रमणि दादी यहां से गए हैं बैंगलोर, सेवाएं की है और करके फिर यहां आए हैं, जिनके साथ सारा समय आप उठे बैठे हैं, मिल करके कार्य किया है सेवा का, और वो आपकी बहन चार पांच दिन में आती है इस स्थिति में, वह आत्मा देह छोड़ करके इस स्वरूप में आपके सामने आपकी बहन आ रही है, तो साधारण व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है और दादी जी का व्यवहार क्या था? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट सीन। और उस समय क्या कर्तव्य करना है, क्या फर्ज है उनकी, शी डिड दैट। वर्तमान के संदर्भ में यह लाइन का अर्थ जो अभी इलस्ट्रेशन दिया, वर्तमान के संदर्भ में आवश्यक ज्ञान का चिंतन करना सत्य है। तो आवश्यक ज्ञान क्या था, क्या दादी ने अपने आप को ज्ञान दिया सिखाया? ड्रामा। तो हम आत्मा, उस आत्मा से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं बाबा की सेवा, और अभी अभी वह आत्मा अचानक शरीर छोड़ती है, जो सोचा नहीं था। एक होता है लंबी बीमारी में कोई है तो मालूम है आज नहीं तो कल भी देह छोड़ेगा, तो मन प्रिपेयर्ड हो जाता है, पर अचानक आपके सामने ये बात आती है और आपके निजी नजदीक के रूहानी संसार की एक लीडर दादी चंद्रमणि की आत्मा, तो दादी प्रकाशमणि जी का जो आंतरिक स्टेज थी वो ज्ञान युक्त थी। तो ज्ञान क्या सिखा रहा है, मुझे ज्ञान ने क्या सिखाया इस समय कि एक आत्मा ने देह छोड़ा है, तो मुझे आत्मा को ज्ञान क्या सिखाया है, ये है मेरा ज्ञान कि मैं उस समय अचल डल रहूं, बाबा की याद में रहूं, उस बात को स्वीकार करूं, दुख नहीं लगे उस समय, कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, अभी पंजाब जोन कौन संभालेगा, ये प्रश्न ना आए। समझ में आई ना आपको बात? इतने निश्चय बुद्धि परमात्मा की कार्य है। दादियां कैसी निश्चय बुद्धि है, परमात्मा का कार्य है, बाबा बैठा है, बाबा करेंगे आगे, मैं तो निमित्त हूं। इट्स क्लियर भाई साहब, क्लियर? तो आपका प्रश्न पूछिए, फिर से क्लियर पूछिए। नहीं, आपको नहीं समझ में आया, पर क्या नहीं समझ में आया, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर इनसाइड, टेल मी। इसके प्रीवियस वाली स्लाइड को बताऊं या यही, आपको कौन सी स्लाइड समझ में नहीं है, ये या इसके प्रीवियस वाले? इसके पहले वाली तो ये है ऑब्जेक्टिव्स की, तो बाद वाली तो यही है। जब हम बहुत ही पास्ट की बातें याद करते हैं या बहुत ही अधिक व्यर्थ चिंता भविष्य की करते हैं और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प नहीं करते, राइट? तो ये गलत है। एक सरल उदाहरण आपको दे रहे हैं, अभी आप ये क्लास अटेंड करने बैठे, सो एंड सो टॉपिक, जो भी टॉपिक है, यदि आप यहां बैठे बैठे पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं या भविष्य की बातों को याद कर रहे हैं, तो अभी आपकी वर्तमान समय की यह घड़ी जिसमें आपको ये टॉपिक समझना है वो आप समझ नहीं पा रहे, आप वर्तमान में नहीं हो, या तो आप भविष्य की सोच कर रहे हो या तो आप तो वेर एवर यू आर यू रिमेन प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम। अभी आपका फर्ज क्या है, सीखना, राइट? ऐसे ही अगर मुझे यहां सिखाना है और मैं कुछ सवेरे कोई घटना घटी है उसको याद कर रही हूं, मेरा मन अंदर अंदर आपको सिखा रहा है और कुछ और सोच रहा है या भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो दैट इज नॉट राइट। वेर एवर यू आर यूटिलाइज योर प्रेजेंट मोमेंट इन अ राइट वे। तो यहां क्या कह रहे हैं हमें कि भविष्य या अतीत यानी पास्ट के बारे में टू मच चिंतन करके आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, नींद नहीं आएगी, संकल्प चलते रहेंगे, है ना? तनाव यही है ना। अर्थात आप डिटैच होकर के, साक्षीपन की स्थिति का मतलब है डिटैच होकर के अपनी ड्रामा की सीन को देखना, उसके बजाय आप नहीं देख रहे हैं ड्रामा की सीन को डिटैच होकर, तो क्या होगा? मन में हलचल आएगी, बहुत सारे विचार आएंगे, इसको कहते हैं डगमग हो जाना। तो इसमें वर्तमान काल के सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता, अर्थात जो सीन अभी आपकी चल रही है वो किस लिए मुझे बेनिफिशियल है, मेरे किस मतलब से है, अच्छाई के लिए है, मैं अभी वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कर रहा हूं, ये मेरे किस भलाई के लिए है, ये सत्य समझ में आपको नहीं होगा और आप भविष्य के बारे में सोचोगे या पास्ट के बारे में सोचोगे, राइट? तो तनाव उत्पन्न होगा ना। जब जो सीन चल रही है, अब इसके बाद आपकी 13 तारीख ट्रेनिंग पूरी होगी तो फिर दूसरी सीन होगी आपके जीवन में, है ना? कोई भी सीन होगी, जो भी सीन होगी, तो उस समय वो जो सीन हो रही है, दृश्य चल रहा है आपके जीवन का, आप चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे ट्रेन में है, चाहे कहीं भी है, पर वह सीन आपके सामने क्या बोध, क्या उपदेश, क्या बेनिफिट आपको संकेत कर रहा है, इसका ज्ञान तब आपको आएगा, समझ तब आएगी कि ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी क्यों है। जब आप पास्ट या भविष्य के अति चिंतन में नहीं है पर वर्तमान को सफल कर रहे हैं, ठीक है? मन अतीत की घटनाओं या भविष्य जीवन की अनिश्चितता एवं असुरक्षा से प्रभावित होकर व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लग जाता है। ये कर रहे हैं प्रेजेंट, हमारी स्वभाव ऐसा हो गया है ना, ऐसा ही कर रहे हैं ना हम सब। तो ये नहीं करना है, इसको ज्ञान कहा है, इसको कहा है सत्य। तो अतीत या भविष्य के चिंतन को वर्तमान में आवश्यकता न होने के कारण यह व्यर्थ या नकारात्मक चिंतन है, जो कि वर्तमान के संदर्भ में आवश्यक समझ या आवश्यक ज्ञान का चिंतन करना ही सत्य है। तो एट प्रेजेंट मुझे क्या करना चाहिए, सुनना है तो सुनिए बरोबर, कुछ करने का है तो कीजिए बरोबर, कहीं जाने का है एट प्रेजेंट, वर्तमान में समझो सीन ऐसा है कि कहीं आपको जाना चाहिए तो आप जाइए, जो राइट बात है वो उस समय आप कीजिए, जो यथार्थ बात है उसे आप कीजिए, ऐसा यहां मैसेज है। मन में दूसरों की कमजोरियों के प्रति चलने वाला चिंतन, दूसरों की नियति पर अंगुली उठाना, स्वयं के प्रति संदेह और चेतना में आई अनेक विकृतियों के कारण के ऊपर एक प्रकार का अज्ञानता का पर्दा छा जाता है। जब हमारा मन ग्रसित है इन सभी इस प्रकार के व्यर्थ चिंतनों में, तो क्या हो जाएगा? अज्ञानी बन जाएगी, ज्ञानी नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, राइट क्या है वो पहचान नहीं पाएंगे, सत्य का अनुभव नहीं हो पाता, या मन पर छाए विचारों के अनुसार सत्य का सापेक्षिक अनुभव होने लगता है। अगर उस समय हमारा मन दूसरों की कमियों कमजोरियों में नहीं है, किसी की नियति पर अंगुली नहीं उठाता, स्वयं के प्रति भी कोई डाउट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सत्य का सापेक्षिक यानी उस संदर्भ में, रिलेटेड टू दैट कॉन्टेक्स्ट, आपको उसका अनुभव होने लगता है। तो साक्षी हो, दृष्टा होकर देखने से अपने परिवेश में घटित हो रहे सत्य का अनुभव हो पाता है। जब उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके अच्छे बुरे की फीलिंग में चले जाते हैं, पर अगर साक्षी होकर के यानी डिटैच होकर के देखते हैं उस सीन को, तो क्या होगा? राइट क्या है वो अनुभव, अर्थात आपका इंट्यूशन, आपकी इंट्यूटिव रिस्पॉन्स आप सुन पाएंगे, उस समय अंतःप्रेरणा की आवाज आप सुन पाएंगे, यदि आप साक्षी स्थिति में है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर है। सत्य स्वयं प्रमाणित होता है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप इस शरीर को धारण करने वाली एक आत्मा है। तो यहां पर योग की मुद्रा बताई है कि योग कैसे आप करें। तो स्वयं को एक सूक्ष्म सफेद फरिश्ता स्वरूप में देखते हुए आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें, और वह कहां का निवासी है तो इस दुनिया से पार। अब कालातीत सत्य शुरू हो गया कि इस पांच तत्वों की जो तुम्हें सत्य दिखाई दे रहा है, ये दुनिया ही सब कुछ है, यही हम परमानेंट रहने वाले हैं, यहाँ के ही है, ऐसी जो आपकी भ्रांति है वो राइट नहीं है। पर सच्चा ज्ञान क्या है कि यहाँ आप टेम्पररी आए हैं इस पांच तत्वों की साकार दुनिया में, और इस दुनिया से भी पार बियॉन्ड एक और निर्वाण शांति की दुनिया है, जो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जहां पर आप उस परमात्मा पिता को मन बुद्धि द्वारा अनुभव करें और वहां पहुंचे। कहां ले जाओ मन बुद्धि को? उस शांति के देश में। तो वह परमात्मा पिता निराकार कल्याणकारी सर्वशक्तिमान है, ज्ञान सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के सागर है, और उन्हें याद करने से मानसिक शांति, मन ज्यों ही वहां पहुंचता है तो मन को शांति मिलती, आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं। तो स्वयं को आत्मा समझे और मानिए कैसे राज्यों का अभ्यास करें, कि जैसे कि आपकी आत्मा मस्तक से निकल रही है और ऊपर की ओर शांति धाम परम धाम की ओर जा रही है परमात्मा पिता से मिलन करने, और वह जो आत्माओं का घर है जहां लाल सुनहरा अखंड प्रकाश है पांच तत्वों से पार की दुनिया, जहां ज्योति बिंदु आत्माएं निवास करती है। तो राजयोग के चार विषय हैं, पहला ज्ञान, दूसरा योग। तो योग क्या है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास, स्व की ओर मन को मोड़ना, अंतर्मुखता यानी स्व की ओर मन को मोड़ना, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, बाह्य मुक्ता को छोड़ना, भविष्य अंतर्दृष्टि, भविष्य सृष्टि को विजुअलाइज करना एवं अपना स्वरूप बनाना, योगी स्वरूप। तीसरा विषय है राज्यों का धारणा। चौथा है सेवा। सेवा भी वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, मन द्वारा। राजयोग से लाभ, इस योग को करने से आत्मा की पवित्रता की शक्ति में वृद्धि होती है। क्यों? देह से न्यारी मैं आत्मा। जब योग में हम बैठते हैं तो हम इस देह भान से न्यारे हो जाते, तो आत्मा की ऊपर जो इन्फ्लुएंस थी देह की वो घटती है, कम होती है, डिमिनिश होती है, इसलिए पवित्रता की शक्ति में वृद्धि होती। आत्मा में शक्ति का संचार होता, बैटरी चार्ज होती, अष्ट शक्तियों की आत्मा को प्राप्ति होती। वे अष्ट शक्तियां कौन सी है? पहली है विस्तार को संकीर्ण करना, पावर टू विथड्रॉ। दूसरी है समाने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तीसरी टॉलरेंस की। चौथी एडजस्टमेंट की। पांचवी परखने की। छठी निर्णय करने की। सातवीं सामना करने की। आठवीं सहयोग की शक्ति। तो एक राजयोगी जब परमात्मा की याद में बैठता है तो स्वयं को डिटैच करता है, कमल की तरह, जैसे कमल कादव से कीचड़ से डिटैच रहता, वैसे स्वयं को इस दुनिया के, इस देह के विचारों से न्यारा बनाता। और परमात्मा पिता की याद में बैठता तो परमात्मा पिता से उसको पावर्स की रेजिस मिलती है, तो राजयोग से ईश्वर की, परमात्मा पिता की शक्तियां अनुभव करना। इन अष्ट शक्तियों का भी अष्ट गुणों से संबंध है। जैसे सबसे पहले विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो उस समय आप पीस का प्रयोग करें, शांति का। समाने की शक्ति में फ्रीडम का, सहन शक्ति में सहन शक्ति का, एडजस्टमेंट में लव, ह्यूमिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का, परखने की शक्ति के लिए इंटरनल ऑनेस्टी प्रामाणिकता, डिस्क्रिमिनेशन के लिए। निर्णय शक्ति के लिए तीन गुण हैं, न्याय, सम्मान, सत्य। पावर टू फेस के लिए हिम्मत, जिम्मेदारी, दृढ़ता। पावर टू कोऑपरेशन के लिए कोऑपरेशन। इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के लिए अभी एक एक शक्ति को समझेंगे। अंतर मन की यात्रा करते शांति का अनुभव करें, वातावरण से न्यारे हो जाए, कर्म करते विचारधारा में अलिप्त भाव हो, मानसिक कार्यक्षमता में मजबूती आती, सूक्ष्म स्वरूप से अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे आप। जो ही आप पावर टू विड्रॉ, देह में अभी आए, देह के भान से, कार्यों से, जिम्मेदारियों से, संसार से, यहां वहां की बातों से न्यारा बनना, ये है पावर टू विड्रॉ। तो ये जो अव्यक्त स्वरूप है, तो यहां पर बताया है फाउंडर पिता ब्रह्मा कुमारी के, ब्रह्मा बाबा, कैसा उनका सूक्ष्म शरीर प्रकाश का है। ठीक वैसा आप भी राजयोग में अपने सूक्ष्म काया से उस परमात्मा पिता से अव्यक्त मिलन करें। तो ये है राजयोग से पहली प्रथम शक्ति की प्राप्ति, स्व को सशक्त बनाना, शक्तियों का संचय अनुभव करना, फरियाद सुनते भी प्रभाव से न्यारापन, फरियाद के प्रभाव से न्यारापन, यथार्थ कर्म के लिए सदैव तैयारी रहे, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपका जो भी लक्ष्य है वो आपके आगे स्पष्ट हो, नकारात्मक एवं व्यर्थ विचारों से मुक्ति, सकारात्मक सोच की शक्ति में वृद्धि, बीती बातों पर पूर्ण विराम, भविष्य को बेहतर बनाएं, अन्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता महसूस करना, और आपका इस अभ्यास से मन व दिल हल्का रहेगा। ठीक है, पावर टू टॉलरेट, यह आंतरिक बल है, विकट परिस्थितियों में भी सक्रिय बने रहना, कार्य में अपनी पूर्ण क्षमता लगाना, प्रशंसा एवं निंदा से न्यारे रहना, रचनात्मक रीति से मुकाबला करना एवं दूसरों को सम्मान देना। इस शक्ति की उत्पत्ति बुराई से पूर्णतया अनासक्त रहना। टॉलरेंस की शक्ति से क्या है? बुराई से अनासक्त रहना। कोई भी बात का सामना करना है पर रचनात्मक, विनाशकारी तरीके से नहीं, दूसरों को सम्मान भी दें और जो बात आपको रखनी है अपनी रखें। पावर टू एडजस्ट, अनुकूल बनना ही सत्यनिष्ठा है। आप ट्रू सच्चे हैं, अनुकूल बनिए। औरों के प्रति विनम्रता, झुकाव एवं सहनशीलता रखें। आंतरिक मजबूत मनोबल, कोई भी तूफान के समय अपना मनोबल बनाएं, ये भी एडजस्ट होना है। दूसरों से सम्मान एवं प्रशंसा प्राप्त होती है जब आप एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे नदियां अनेक बाधाओं में भी समुद्र में पहुंच जाती, समुद्र सर्व नदियों को अपने में समा लेता, ऐसे संगठन में हम सबके साथ मिक्स हों और सबको अपने अंदर स्थान दें, अपने दिल में स्थान दें। इसको कहते हैं एडजस्ट होना। परखने की शक्ति, लाभ एवं हानि, सत्य एवं झूठ का फर्क पहचानना, बुद्धि संशोधन पूर्ण आत्मविश्लेषण करे, प्राथमिकता या प्रायोरिटी प्रदान करे, चयन करे, अनुमान एवं सही मूल्यांकन करे। ये है परखने की शक्ति। यह शक्ति स्वयं की एक योग्यता है जो स्वयं को एवं दूसरों को सही गाइडेंस, सही वैल्यू प्रदान करती है। वास्तविकता को पहचानने की यह कला भी है। पावर टू मेक डिसीजंस, भाई कैसे डिसीजन लो, कौन से डिसीजन लो, सर्वोत्तम निर्णय का चयन करो। परिस्थिति है उसमें ये अल्टरनेटिव है, ये निर्णय करूं या ये निर्णय करूं। अगर ऐसी बात है तो उसमें से बेस्ट जो निर्णय है वो आप कीजिए। एक के अलावा अन्य संभावनाओं को छोड़ दें। बेहतर क्षमता से उत्तम निर्णय लें। निर्णय परिशुद्ध हो, शीघ्र हो, स्पष्ट हो, समय पर लिया गया हो, बगैर पूर्वाग्रह के निर्णय कीजिए। बाइस्ड व्यू से नहीं, किसी के प्रति इमेजिनेशन या भ्रांति के आधार से निर्णय न लीजिए, पर बिना कोई पूर्वाग्रह के। परिस्थितियों के, सलाह के, भावनाओं के प्रभाव से आप न्यारे रहे, अलग रहे। जब निर्णय लो तो क्या करो, परिस्थितियों के वश लेकर होकर निर्णय करेंगे तो गलत निर्णय होगा, किसी की सलाह में आकर के निर्णय करोगे तो भी गलत, अगर किसी के भावनाओं में बह करके निर्णय करोगे तो भी गलत। निर्णय हमारी स्थिति का दर्पण है। हम जो निर्णय अपनाते हैं, लेते हैं, वो हम किस क्वालिटी के हैं, किस प्रकार के हैं, उसका दर्पण है। निर्णय शक्ति तब बढ़ती जब समस्याओं को दूसरों के नजरिए से देखते हैं। अच्छी निर्णय शक्ति तब बनती है जब केवल मैं मेरे स्वार्थवश, मेरी आवश्यकता के अनुसार ही निर्णय न लूं, किंतु मेरे निर्णय का दूसरों के जीवन पर क्या असर होगा और दूसरों को क्या चाहिए, उनका भी ध्यान रखते हुए, अपना भी ध्यान रखते हुए जो निर्णय लेता है तो वह निर्णय सर्व को मान्य होगा, सर्व के कल्याण के प्रति होगा और उससे सुखाकारी और सबका भला ही होता है। तो सच्ची निर्णय शक्ति वह है जिसमें अपना भी और दूसरों का भी कल्याण हो। ये इस संदर्भ में है कि टीम में बैठे हैं, कोई चर्चा चल रही है कोई विषय पर, आपने अपना आइडिया दिया, दूसरे ने भी दिया, तीसरे ने भी दिया, चौथे ने भी अपना विचार दिया, पर निर्णय मानो पांचवे व्यक्ति का लिया गया, आपका नहीं सुना गया, तो आपको क्या लगता है, मैंने तो इतनी अच्छी बात कही पर देखो मेरी नहीं मानी गई। तो जिस निर्णय में सबकी भलाई हो, आपकी भी हो, सबकी भलाई हो, अगर वो पांचवे व्यक्ति ने बात बताई है तो वो भलाई का निर्णय लेना उचित है। उस समय हम ये न सोचे मेरा निर्णय नहीं लिया गया, मैंने जो बताया वो नहीं, तो मैं जो चलता है वो अहम के आधारित होता है और अहम के आधारित अगर हमारी बात को कोई पुष्टि देता है, सपोर्ट करता है और वो निर्णय लिया गया तो वो सबके कल्याण का नहीं भी हो सकता है। तो ये सोचना है कि अच्छी निर्णय शक्ति वह है जिसमें सबका भला हो, कल्याण हो, तो उससे क्या होगा, शुभ भावना जन्म लेगी, सबको संतुष्टि होगी और उस निर्णय से सबको फायदा होगा। सामना करने की शक्ति अर्थात गरिमामय जीवन जीने की शक्ति, परिणाम को झेलने की शक्ति, विश्वासी उत्तरदायी बनना। सामना करना का मतलब विश्वसनीय बनो, जिम्मेदार बनो। नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक अनुभव की खोज करना, ये है सामना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। हापुड़ का हंगामा था। कई लोगों ने दूसरा सीन पिकेटिंग किया, तीसरा सीन कोर्ट के केस। सभी में बाबा ने क्या खोजा? सकारात्मक अनुभव। सही बात है। न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आई तो बाबा ने क्या सकारात्मक बात उसमें से ढूंढी कि ये अपने आप बिना खर्चे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मीडिया वाले। किसी ने कहा बाबा आप ही तो कोर्ट में केस करो ना। नहीं, बाप बच्चों पर केस नहीं करेगा। यानी किसी के प्रति बाबा के मन में कोई ग्लानी भाव नहीं। कितनी उच्च कक्षा की ब्रह्मा बाबा की वह स्थिति कि एक भाई मारने आया है, वो सिख धर्म के थे, तो जैसे ही नजदीक आया तो बाबा का वह रूहानी प्यार पिता के रूप में, बच्चे कहा बाबा ने बच्चे, और उस बच्चे में उसको गुरु नानक के साक्षात्कार हो गए। वो पैरों में पड़ गया, आया था कुछ गलत इरादे से, परंतु एक बार बाबा के इर्द गिर्द कोई स्नेक भी आ गया था, पर बाबा उसको ऐसे जाने दिया, ऐसे किया निर्भय होकर के, वो कुछ नहीं किया बाबा को। तो कहते हैं ना, योगियों के इर्द गिर्द भी इतना शांत वातावरण होता है कि हिंसक प्राणी भी उसकी हिंसा भूल जाते हैं, वो हिंसा छोड़ देते हैं आपकी सच्चाई और शुभ भावना से। तो सच्चे योगी थे बाबा। अब एक तो मास चल रहा है बाबा का, तो बाबा हर परिस्थिति में सकारात्मक अनुभव की खोज करते थे। आबू के जंगल में ले जाते थे भाई बहनों को, चलो बच्चे आज चलते हैं पहाड़ी पर। तो सैर की सैर करा ली, और बाबा की जो पहाड़ी है वहां बाबा योग करवाते थे, बच्चे अशरीरी बन जाओ, कब्रस्तान। कई भाई बहन ट्रांस में चले जाते थे। तो हर बात में सकारात्मक उनकी नजरिया दृष्टिकोण। तो परिस्थिति को फेस कैसे किया? बाबा ने इस तरह किया, निश्चय से। तो यज्ञ हिस्ट्री के कई उदाहरण है जो पावर टू फेस के आपके सन्मुख है। ऐसे आदि पिता दधीचि ऋषि ब्रह्मा बाबा के पावर टू कोऑपरेट, क्रियाशील बनाने की शक्ति, समूह भावना का प्रतीक, मिलकर कार्य करना, विशेषताओं को पहचानना एवं उनको प्रयोग में लाना। संगठन स्वयं ही एक मूल्य है जिससे महान कार्य संपन्न होते और संतुष्टता आती है। जो भी अच्छे से अच्छे बेस्ट कार्य हुए हैं वो संगठन के बल से ही हुए हैं, राइट? तो महानतम कार्य की आजादी की लड़त में अहिंसा के बल पर सभी को संगठित कर दिया, वो सत्यता की शक्ति से महात्मा गांधी जी ने। तो महान थे, महान, कितना बड़ा महान कार्य कि भारत को आजादी दिलाई संगठन, सहयोग की शक्ति। सहयोग मिला किस आधार से? वैल्यूज के आधार से। तो जो संगठन वैल्यूज के आधार से बना हुआ है, उसकी कड़ियां व्यक्तियों की इंटरपर्सनल रिलेशन में वैल्यूज है आपस में एक दूसरे के साथ, वो कार्य महान होता है, वो कार्य में सफलता होती है। और अगर नेगेटिविटी से जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ तो आपका डाउनफॉल ही होना है, वो कार्य में सफलता होगी नहीं, उसका परिणाम कुछ गलत ही आएगा। तो पुनः मैसेज है आपको, समय क्या पुकार रहा है, कि अभी राजयोग करो, अभ्यास करो राजयोग का, अष्ट शक्तियों को प्राप्त करो, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप आत्मा जब इस सृष्टि पर आए तो सत्ययुग में आप कैसे थे? संपूर्ण पवित्र थे। फिर त्रेता में सतो पवित्र, द्वापर में रजो गुणी बने, कलयुग में तमो गुणी बने, और अब संगम चल रहा है कालातीत सत्य में, कलयुग और सत्ययुग के बीच का समय संगम का है, तो इसमें आपको क्या बनना है? हीरे तुल्य बनना है। तो आप आत्मा की जो स्टेजेस है वो यहां बताई है, आप क्या थे, क्या हो और अब आपको क्या बनना है। तो आपका संपूर्ण पवित्र स्वरूप ही हीरे तुल्य बनने का है, अतः राजयोग का अभ्यास कीजिए। जैसे यहां बताया है कि आपकी आत्मिक स्मृति को, चेतना को मस्तक में जगाइए, मस्तक के मध्य आप आत्मा बिंदु, और उस पिता परमात्मा को सच्चे प्रेम से याद कीजिए। तो स्वयं को निराकार ज्योति स्वरूप समझते हुए परमात्मा को भी निराकार ज्योति से स्वरूप में देखते हुए याद कीजिए। तो यह जो युग है कॉन्फ्लुएंस एज, ये क्या है, इसका महत्व क्या है? ये जो समय कालातीत सत्य अभी शुरू हो रहा है कि संसार के लिए कलयुग है, और जिन्होंने इस ज्ञान को, परमात्मा को, स्वयं को पहचाना, उनके लिए यह कल्याणकारी संगम युग है। तो यह संगम युग का महत्व क्या है कि इस युग में पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार दिव्यता में परिवर्तन होते, इसको कहते पुरानी चीजें नए में परिवर्तित होती। ये पदार्थ, ये पांच तत्व जो पुराने हो गए हैं वे भी नए शुद्ध बनेंगे। यह जीवन में स्वर्णिम उपकरणों का नव प्रभात है। यह बहुत ही छोटा काल है समय में। इस युग में आध्यात्मिक कलाएं विकसित होती है। यह विदाई और स्वागत करने का समय है। यह पुराने विचार, प्रवृत्तियों और आदतों को छोड़ने का समय है। यह उमंग, उत्साह, पवित्रता और पवित्र चिंतन करने का समय चल रहा है। सर्वोच्च सत्ता से मिलने का यह युग है। कलयुग और सत्ययुग के बीच का यह समय है। यह परिवर्तन काल है। यह हीरे समान युग है। यह कल्याणकारी युग है। यह गहन शांति अनुभव करने का युग है। राजयोग के अभ्यास से स्वयं को 16 कला संपूर्ण बनाए, संपूर्ण निर्विकारी बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए, अहिंसा परमो धर्म, यह है इन सर्व गुणों की शक्तियों का स्वरूप, संपूर्ण दिव्य स्वरूप आत्मा, श्री नारायण के रूप में, श्री लक्ष्मी के रूप में, पवित्रता का ताज पहनकर आने वाले सत्ययुगी दिनों में, वह युग में आप प्रवेश करेंगे। तो स्वयं को राजयोग से संपूर्ण पवित्र बनाएं, परमात्मा से मिलन करें, और भविष्य में आने वाली दुनिया में ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करें। ये है समय का संदेश, समय की पुकार। ऐसा बनना है ना आपको सबको? आप सभी, आप भी, यस। तो ये जो टाइम साइकिल अभी चल रही है समय की, वो भी क्या कह रही है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता। तो ये पांच तत्व जो हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इनका अभी दिव्यीकरण, डिविनाइजेशन चल रहा है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति, जैसी कृति वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी अनुभूति। तो ये सृष्टि चक्र का पल पल गुजरता है, एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता। इस सृष्टि का एक चक्र काल 5000 यानी एक कल्प 5000 वर्ष का है। कंप्लीट एक चक्र को समाप्त होने में 5000 वर्ष लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि रंगमंच पर एक्टर है। सृष्टि चक्र 4 बराबर युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन अवस्थाओं से गुजरता एक कल्याणकारी संगम युग यह होता है। ओके, तो आपको इससे जो मैसेज मिला है वो इंपॉर्टेंस ऑफ राजयुग, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम, समय, यह काल चक्र का समय अभी कहां पहुंचा है जाकर के, बेहद के समय में सतयुग की स्थापना का, संगम युग का। तो इन दो युगों का महत्व को जानकर आप अपने आप को पवित्र बनाएं, हीरे जैसा वैल्यूएबल बनाएं, हीरे जैसा बेदाग बनाएं और अपने आप को संपन्न करने का, भाग्य बनाने का ये समय है, ये जाने। ठीक है, तो ये बातें इसमें आपको कालातीत सत्य का ये सत्य और उस निर्वाण धाम की पहचान, शांति के देश की पहचान, ये आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, अष्ट शक्तियों की भी बात पूछ सकते हैं, संगम युग के महत्व को भी पूछ सकते हैं इसमें। राजयोग के कौन कौन से विषय है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। फिर उसका थोड़ा सा विस्तार बताने का। याद की यात्रा कैसे की जाती है? तो मन बुद्धि को, याद की यात्रा कैसे की जाती है? तो मन बुद्धि को डिटैच करें देह से, देह भान से, आसपास के वातावरण से, और मन बुद्धि को ले जाए इस पांच तत्वों को पार करते हुए आकाश तत्व, गैलेक्सी से भी बियॉन्ड, उस शांति के देश में, परम धाम में ले जाए और रूह बन करके मन बुद्धि द्वारा वहां जाए। वो फिर योग की विधि का बताएंगे। कोई व्यक्ति सेवा किस प्रकार कर सकता है? चार प्रकार, उसमें तीन प्रकार बताए थे ना सेवा के, वाचा द्वारा, कर्म द्वारा, मनसा सेवा द्वारा। फिर उसका डिटेल, जितने मार्क्स का सवाल हो उस अनुसार उसकी फिर डिटेल। धन द्वारा भी करते हैं, संबंधों द्वारा, संपर्क द्वारा, तन मन धन, संबंध, संकल्प, श्वास, संपर्क, सभी प्रकार से कह सकते हैं। राज्यों की कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? अष्ट शक्तियां, फिर उसका विस्तार। राजयोग से प्राप्त होने वाली शक्तियों का वर्णन करें, वही बात है। समय चक्र का विवरण दे, कहां से कहां पहुंचा है और उसमें संगम युग का क्या महत्व है वो भी बताएं। पवित्र समय का वर्णन करें, संगम युग का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये तो सब आपको आता ही है, इसलिए कालातीत सत्य में ये सत्य क्या है आपने जान लिया, समझ लिया। और कोई बात पूछनी है? टॉलरेंस, टॉलरेट कर लिया अर्थात आपने फेस कर लिया, तो किसी के बोल, किसी का व्यवहार, उस समय स्नेह बना रहे, फिर भी हमारे अंदर कड़वापन ना आए, नेगेटिविटी ना आए, नफरत ना आए, ये है टॉलरेंस। फिर भी हम आंतरिक रूप से पॉजिटिव अपने आप को बनाए रखें, है ना? तो इन दोनों शक्तियों के विभिन्न पहलू है, उसमें ये जो अभी आपको बताइए ये भी एक पहलू है, और इसके अलावा भी किताब में बहुत हैं जो अभी अभी आपको बताए गए इन दोनों के, और आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर लें उसे। यह गरिमामय जीवन जीने की शक्ति है, जो फेस कर लेता है वो कैसा जीवन जिएगा, उन्नत, सर ऊंचा करके जिएगा, गरिमामय यानी रिस्पेक्ट वर्थी। परिणाम को झेलने की शक्ति उसमें है, अर्थात उसने फेस कर लिया, स्वयं को विश्वासी बनाया है यानी लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं ऐसा बनाया, या अपने आप को जिम्मेदार साबित किया तो आप में ये शक्ति आ गई। नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक अनुभव करना, फिर भी उसमें से अपने आप को अपने मन बुद्धि को डिप्रेशन में न ले जाएं, पर सकारात्मक लें। बताती हूं, यह आंतरिक बल है, विकट परिस्थितियों में भी सक्रिय बने रहना। वहां क्या कहा, पॉजिटिव बने रहना, यहां कहा सक्रिय। जो आपको करना है वो आप रुके नहीं, अब कर ले, या सकारात्मक बने रहें या सक्रिय बने रहें। कार्य में अपनी पूर्ण क्षमता लगाएं, काम को छोड़े नहीं। दिल टूट गया मेरा, क्या करूं, आज मेरे को मूड नहीं है, ये नहीं। प्रशंसा और निंदा से न्यारे रहे, तो जो अपना कर्तव्य है उसमें उसको खुशी खुशी करते रहें। मानो आपको किसी ने दो वचन कहे हैं, आपका मन थोड़ा सा मायूस है और आप क्लास में आकर के बैठे हो, राइट, तो आपको सुनने की मजा नहीं आ रही है क्लास, उसके बजाय आपको तब भी सुनने की मजा आए। आपके बॉस ने बहुत आज आपको डांट लगाई है, तब भी आप अपने काम पर गए और आपको जो ड्यूटी मिली है वो आपने सिंसियरली निभाई, आप अपने काम से जी नहीं चुराया, तब भी, समझ गए। इसको कहते प्रशंसा और निंदा में क्या रहे आप, एक रस, ये एक रस रहना, तब भी आपने खुशी को छोड़ा। कौन सा रस लेना है, एक रस में कौन सा रस लेते हैं, आम रस नहीं, खुशी का रस, गन्ने का रस नहीं, कौन सा रस लेना है, खुशी न चली जाए मेरी, तब भी। तो इसको कहा, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हमें करनी, यानी अपने आप को सिखाना है। इसलिए कहा प्रशंसा में बहुत उड़ो नहीं और निंदा में बहुत नीचे नहीं आ जाओ, दोनों में खुश रहो, दोनों में खुश रहो। रचनात्मक रीति से मुकाबला करें, कोई परिस्थिति है जिसमें आपको कुछ बताना है या सामना करना है, पर डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में, रचनात्मक रीति से, और दूसरों को सम्मान भी दे। एक इंडस्ट्री में एक 20 साल से पुराने बड़े ऑफिसर थे और वहां एक जूनियर भाई ज्वाइन हुआ, तो जूनियर भाई कहता है कि नई टेक्नोलॉजी सीखकर मैं आया हूं, मैं तो ये सब जानता हूं, मैं तो ट्रेंड हूं वगैरह वगैरह, ये जो आप इस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो ना, ये राइट नहीं है, इस रीति से नहीं, ऐसे करना चाहिए क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा कह रही है। तो वो कह रहा है बड़ा ऑफिसर, मैं 20 साल से ये कंपनी चला रहा हूं तो क्या मैं राइट नहीं हूं, तुम तो आज आए हो, तुम तो आज जुड़े हो और तुम कहते हो कि तुम जो कहते हो वो मेथड राइट है, और मेरा जो अनुभव है वो कहता है ऑफिसर, मेरा जो अनुभव है 20 साल का वो राइट है, ठीक है, है ना, है ना। अभी हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है उसका अर्थ बताते हैं। तो उसने आखिर उस कंपनी में ही रहना था, तो उसने फिर नम्रता धारण की, तो नम्रचित क्या करेगा? सम्मान देगा। सर सच्ची बात है, आपने 20 साल से इस कंपनी को चलाया है, आपने इतना प्रोडक्शन करके दिखाया है, यस यू हैव ऑल्सो डन वेरी राइट थिंग, और इससे अपना ये कॉस्ट, इतना प्रोडक्शन, इतना टर्नओवर हुआ, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये है सम्मान देना। अब इसमें अगर अपन ये मशीनरी अगर लगाते हैं तो यही काम बहुत जल्दी हो सकता है। फिर भी ये मेरा विचार है जो मैंने आपके आगे रखा है, फिर भी आप जैसे अच्छा समझे, उचित समझे, बस इतना कहकर चुप। तो वो सामने वाले के दिल में बात बैठ गई, ये इसका भाव तो सच्चा है, इसके मन में कोई टग ऑफ वॉर या कोई कंपटीशन नहीं है, या मेरा इंसल्ट करने के लिए ये नहीं कह रहा है। इसको कहते हैं रचनात्मक रीति से मुकाबला करना एवं दूसरों को, ये कलाएं हैं ना, ये भी एजुकेशन है ना, दिस इज ऑल्सो एजुकेशन। ठीक है, अभी क्लास है, इसके बाद 7 बजे योग का प्रोजेक्ट वर्क का। अच्छा अच्छा, ओके, चलो अपना राजयोग का क्लास शुरू कर लेते हैं, अपन सब योग में बैठ जाते हैं क्या। हाँ, गुब्बारे वाला, वो लिविंग वैल्यूज वाला, वो एक्सरसाइज चाहिए। बलून वाला तो ठीक है, पर आप लोगों को आज जैसे सवेरे दृढ़ता का बताया था आपने, आज किस थीम पर करना है अभी योग? अष्ट शक्ति। ओम शांति। इस विश्व रंग मंच पर हम आत्माएं, धरती के सितारे, इस पृथ्वी के ऊपर सृष्टि रूपी गोले के ऊपर विराजमान है। चमकते हुए सफेद प्रकाश के सूक्ष्म काया में हम योगी सृष्टि के गोले पर विराजमान है। प्यारे बाबा, हमें इस 5 तत्वों की दुनिया से पार हल्के से बलून में बिठाकर उड़ाकर ले जाइए। हम चमकीली ड्रेस पहनकर सर्व आपको याद कर रहे हैं। अव्यक्त बाबा, आपका बलून या आपका विमान हम सबको उड़ाने लिए भेजिए। आकाश से पार पृथ्वी के गोले पर चमकीली ड्रेस में सफेद प्रकाश की काया में हम आत्माएं बैठे हैं। सूक्ष्म वतन की ओर ध्यान देकर विजुलाइज कीजिए। सूक्ष्म वतन से हमारे अलौकिक बाबा अव्यक्त स्वरूप से हम सर्व के लिए उड़ता हुआ बलून लाए हैं, हम आत्माएं बाबा आपके प्यार में इस बलून में बैठ रहे हैं। इस साकार दुनिया के वायुमंडल से, भौतिकता से न्यारे हम आत्मा पंछी सूक्ष्म वतन की ओर जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, आप हल्के होकर सूक्ष्म वतन की ओर जा रहे हैं। सफेद प्रकाश की दुनिया में पहुंचे, पवित्र प्रकाश, अतीन्द्रिय सुख देने वाला प्रकाश, सफेद चमकते हुए सूक्ष्म शरीर में बाप दादा शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा, हम सर्व ब्राह्मणों को राजयोगियों को फरिश्ते बच्चों को मिल रहे हैं। अपनी पवित्र दृष्टि की करंट पावर अष्ट शक्तियों के रूप में हम आत्माओं पर प्रवाहित कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि से बाबा हमें दिव्य बना रहे हो, आपकी पवित्र दृष्टि से हम आत्माएं आत्म अभिमानी न्यारे सहन शक्ति धारण किए समाने की शक्ति को अनुभव किए परखने की शक्ति प्राप्त करते हुए सही निर्णय की बुद्धि अनुभव कर रहे सामना करने की शक्ति मनोबल प्राप्त करते हुए सहयोगी आत्माएं बन गई। सकारात्मक बन गए। प्यारे बाबा, हम सर्व आपके सहयोगी मददगार फरिश्ते हैं। आपकी तरह सूक्ष्म प्रकाश की काया में आपसे सर्व शक्तियां लेकर स्वयं को शक्तिशाली बनाकर पांच तत्वों की दुनिया को भी सकाश दे रहे हैं। वायुमंडल को अष्ट शक्तियों की किरणें पहुंचा रहे हैं। हम सर्व होली हंस फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्वरूप राजयोगी शांति के मणि शीतलता और मधुरता को अनुभव करते हुए अष्ट शक्तियों से संपन्न बनकर पवित्र बलून के माध्यम से सूक्ष्म लोक से धीरे धीरे साकार सृष्टि की ओर आ रहे हैं। हम ज्योति के देश से ज्योति स्वरूप आत्माएं सृष्टि मंच पर अवतरित हो रहे हैं। इस दिव्य स्वरूप से सूक्ष्म प्रकाश की काया के साथ पांच तत्वों के देह में प्रवेश कर रहे हैं। हम आत्माएं इस ब्रेन को मस्तिष्क को भी चार्ज कर रहे हैं। सकारात्मक शक्ति मस्तिष्क को दे रहे हैं। ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ब्रेन की पावर शुद्ध हो रही है। यह नेत्र शुद्ध हो रहे हैं। यह कान, मुख, नाक शुद्ध हो रहे हैं। मुझ आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह की सर्व कर्मेंद्रियां संतुलित हो रही है। एक पवित्र प्रकाश इस स्किन को शुद्ध बना रहा है। त्वचा शुद्ध हो रही है। हर ऑर्गन में दिव्य शुद्ध प्रकाश की चेतना प्रसरित हो रही है। विकार नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा भी शुद्ध इस देह रूपी मंदिर के सर्व ऑर्गन्स भी शुद्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा भी पावर अनुभव कर रही हूँ। यह पांच तत्व भी पावर अनुभव कर रहे हैं। मेरे आसपास चारों ओर पवित्र प्रकाश के वाइब्रेशंस रेडिएट हो रहे हैं। चारों ओर लाइट और माइट का वायुमंडल बन गया है। मेरे आसपास सर्व आत्माओं को यह पावर मिल रही है। इस पवित्र तेज पुंज में बाबा आप हम सब की सुरक्षा कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत थैंक्स बाप दादा। ओम शांति। ओम।